प्रमाण चार प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द नाम से। इन चारों में प्रत्यक्ष प्रमाण को हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब अनुमान प्रमाण के बारे में पढ़ाई करनी है। यह अनुमान प्रमाण का जो यहाँ ग्रंथ में विचार है यह थोड़ा लंबा है और तार्किक शक्ति को बढ़ाने वाला यह प्रकरण है। इसको पढ़ने से चिंतन करने की क्षमता, विचार करने की क्षमता जो है ना, उसमें बहुत विकास होता है। तो बहुत ही श्रद्धा से और निष्ठा से इस अनुमान प्रकरण को हमें पढ़ना है। हमने पहले बताया था कि न्याय दर्शन की आत्मा जो है वह अनुमान प्रमाण ही है। अनुमान प्रमाण के कारण ही जो है न्याय दर्शन का इतना महत्व दर्शनों के बीच में होता है। तो चलते हैं, अनुमान प्रमाण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ग्रंथ को निकालें, उसमें लिखा हुआ है लिंग परामर्शः अनुमानम। अनुमान किसे कहते हैं, तो अनुमान का लक्षण बताया, लिंग परामर्शः अनुमानम माने लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। ये लिंग शब्द क्या है और परामर्श शब्द क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ये स्वयं आगे बताएंगे, इसलिए मैं अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी केवल इतना समझना है हमें कि लिंग परामर्श अनुमानम, लिंग परामर्श को अनुमान कहा जाता है। लिंग परामर्श का मतलब ये है कि लिंग का परामर्श, तो लिंग के परामर्श को अनुमान कहा जाता है। अब अनुमान किसे कहते हैं, तो ये नहीं अनुमीयते तत् अनुमानम, जिसके द्वारा अनुमीयते माने अनुमिति होती है उसे हम अनुमान कहते हैं। आप ये जानिए कि पहले आप पढ़ चुके हैं कि प्रमा के बारे में और प्रमाण के बारे में। तो प्रमा जो होती है उसका लक्षण बताया था, यथार्थ ज्ञानम प्रमा, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो वह जो यथार्थ ज्ञान है अथवा प्रमा है वह चार प्रकार का होता है। तो उस प्रमा के कारण भी जो है ना वो चार प्रकार के होते हैं। यही है, ज्ञान हो गया प्रमा और कारण हो गया प्रमाण। तो ये स्वाभाविक है ना कि अगर ज्ञान चार प्रकार के हैं तो चारों ज्ञानों को उत्पन्न करने वाला जो कारण होगा वो भी चार होगा। तो जैसे प्रमाण के बारे में मैंने अभी बताया था कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण होते हैं। तो प्रमा कौन होते हैं चार, तो वो भी आप अभी समझ लीजिए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध। फिर से सुन लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। प्रमा चार प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध। इन चारों प्रकार के प्रमाओं में प्रत्यक्ष शब्द जो है ना यह प्रमा के लिए भी प्रयुक्त होता है और प्रमाण के लिए भी प्रयुक्त होता है। ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं और ज्ञान के करण को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। इसलिए आप संशय में मत पड़िएगा, हमने प्रमाण की गिनती अगर करते हैं तो उसमें भी हम प्रत्यक्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं और प्रमा की गिनती करते हैं उसमें भी प्रत्यक्ष का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्यक्ष शब्द जो है ना वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता है, माने प्रत्यक्ष प्रमा भी है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। ऐसे ही सेकेंड नंबर पर अनुमिति, अनुमिति मी में छोटी और ती में छोटी, अनुमिति प्रमा है और उसका कारण जो है अनुमान प्रमाण है। फिर उपमिति, ये जो है प्रमा है और उसका कारण जो है उपमान, वह प्रमाण है। ऐसे ही शब्द प्रमाण है और शाब्द बोध जो है वह शाब्द बोध जो है वह प्रमा है। तो इस तरह से चार तरह के ज्ञान माने जाते हैं न्याय दर्शन में और चार तरह के उसके कारण माने जाते हैं। तो वो जो चार तरह के कारण हैं वही प्रमाण कहलाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो यहाँ पर ग्रंथ में अनुमान शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है, ये नहीं अनुमीयते तत अनुमानम, ये न तृतीया विभक्ति है, इसका अर्थ होगा जिसके द्वारा। तो जिसके द्वारा अनुमीयते माने अनुमिति की जाती है या अनुमिति होती है। अनुमिति क्या है? एक विशेष प्रकार की प्रमा है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। आप जानते हैं कि ज्ञान चार प्रकार के हैं, उनमें से एक प्रकार का ज्ञान जो है वह अनुमिति है। तो जिसके द्वारा अनुमिति होती है माने अनुमिति नाम की प्रमा होती है, अनुमिति नाम का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा होता है वह अनुमान कहलाता है। तो अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि किसके द्वारा अनुमिति होती है, तो आगे लिखते हैं लिंग परामर्शेन च अनुमीयते, कि लिंग परामर्श के द्वारा अनुमीयते माने अनुमिति होती है, अतः लिंग परामर्श अनुमानम, चूंकि लिंग परामर्श से अनुमिति होती है इसलिए लिंग परामर्श को हम अनुमान कहते हैं। क्योंकि हमने अनुमान की व्युत्पत्ति यही बताई थी ना, कि जिसके द्वारा अनुमिति हो उसे हम अनुमान कहते हैं। तो किसके द्वारा अनुमिति होती है? लिंग परामर्श के द्वारा अनुमिति होती है, इसलिए लिंग परामर्श को हम अनुमान कहते हैं। फिर आगे कहते हैं तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रति करणत्वात्, ये एक सेकंड रुकना, हाँ कहते हैं कि तच्च, तच्च से किसको लेना है? अनुमान को लेना है, लिंग परामर्श रूपी जो अनुमान है उसको लेना है। तो तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रति, तच्च धूमादि ज्ञानम, तच्च माने लिंग परामर्श जो है वह क्या है? धूमादि ज्ञान है। इसको आप धूमादि ज्ञान को लिंग परामर्श भी कह सकते हैं और अनुमान भी कह सकते हैं। तो वह जो लिंग परामर्श रूप अनुमान है कौन? धूमादि ज्ञान, उससे वह धूमादि ज्ञान अनुमितिम प्रति करणत्वात्, वह जो धूमादि ज्ञान है लिंग परामर्श रूप अनुमान वह अनुमिति के प्रति करण होता है। तो ये भी आप जानते हैं कि अनुमिति करणम अनुमानम, जो अनुमिति का करण होगा वह अनुमान कहलाएगा। तो लिंग परामर्श जो है वह कौन है? धूमादि ज्ञान है और वह अनुमिति के प्रति कारण है, इसलिए उसको हम लिंग परामर्श को अनुमान प्रमाण कहते हैं। ताकि फिर धूमादि ज्ञान जो है वह अनुमान हो गया माने अनुमान प्रमाण हुआ, तो अनुमिति क्या है धूम? तो कहते हैं अग्नि अग्नि आदि ज्ञानम अनुमिति ही, कि अग्नि आदि का ज्ञान जो है वह अनुमिति है, अतत्कर्णम धूमादि ज्ञानम, और उस अनुमिति का कारण जो है धूमादि ज्ञान है। अब यहाँ पर कुछ शब्द को बताना जो है ना मुझे जरूरी लग रहा है, कि यहाँ ये बताया, सबसे पहले तो कहा कि अनुमान क्या होता है, तो लिंग परामर्श अनुमान होता है। फिर इन्होंने अनुमान शब्द की व्युत्पत्ति बताई कि जिसके द्वारा अनुमिति होती है वह अनुमान है। अब फिर बताया कि किसके द्वारा अनुमिति होती है, तो लिंग परामर्श के द्वारा अनुमिति होती है, इसलिए हम लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। फिर इन्होंने उदाहरण दिया कि लिंग परामर्श अथवा अनुमान का उदाहरण दिया कि तच्च धूमादि ज्ञानम, धूमादि ज्ञान जो है उसे ही हम लिंग परामर्श कहते हैं अथवा अनुमान कहते हैं। क्यों अनुमान कहते हैं? तो उसमें दिया अनुमितिम प्रति करणत्वात्, क्योंकि वह अनुमिति कराने के लिए वो करण की भूमिका में होता है, करण का काम करता है। अब यहाँ दो बात बताई गई कि अनुमिति क्या है, तो कहा कि अग्नियादि ज्ञानम अनुमिति ही, अग्नि आदि का जो ज्ञान है वह अनुमिति है, और उसका करण जो है उस अनुमिति को कराने वाला जो है हेतु वह हो गया धूमादि ज्ञानम। अब ये धूमादि ज्ञान को इन्होंने अनुमान बताया और अग्नियादि ज्ञान को इन्होंने अनुमिति बताया, तो इसको हमें समझना है। आगे ऐसे ये स्वयं बहुत व्यापक रूप से समझाने वाले हैं, फिर भी आप एक लाइन में समझ लीजिए कि किसी पर्वत पर किसी पहाड़ पर आप जो है ना दूर से ही धुआं देखते हैं, धूम, तो धुआं देखने से आपको धूम का ज्ञान होता है, धुआं को ही संस्कृत में धूम कहते हैं। तो दूर से जो है ना पर्वत पर जब आप देखते हैं कि धुआं उठ रहा है, उस समय में धूम का आपको ज्ञान होता है कि पर्वत में धूम है। उसके बाद जब धूम का ज्ञान होता है तो आपको पहले से जानकारी रहती है कि धुआं जो है ना बिना आग का तो उठता नहीं है। तो धुआं अगर यहाँ उठ रहा है पर्वत में, इसका मतलब है कि यहाँ पर अग्नि का वास है, यहाँ पर आग जरूर है। तो इस तरह से धूम को देख करके आप अग्नि का अनुमान करते हैं कहाँ पर, पर्वत में। इसलिए किसके द्वारा आपने अग्नि का अग्नि की अनुमिति की, धूम को देख करके ना, तो धूम ज्ञान के द्वारा अग्नि ज्ञान की अनुमिति होती है। तो इसलिए जो है ना धूम ज्ञान को लिंग परामर्श कहा अथवा अनुमान कहा, और अग्नि ज्ञान को जो है ना अनुमिति कहा। चूंकि एक ही टाइप का अनुमान नहीं होता है, अनंत अनुमान होते हैं, अनंत अनुमिति होती है, इसलिए धूम ज्ञान को नहीं कह करके धूम आदि ज्ञान कहा। माने धूम आदि ज्ञान जो है उस ज्ञान से क्या होता है, अग्नि आदि ज्ञान की अनुमिति होती है। इस तरह से हमने सामान्य रूप में आपको अनुमिति और अनुमान के बारे में बताया। अनुमिति है अग्नि आदि का ज्ञान होना, और अनुमान है धूम आदि का ज्ञान होना। मैंने कहा था कि लिंग परामर्श शब्द के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे ग्रंथकार स्वयं बताएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं, प्रश्न करते हैं कि किम पुनः लिंगम कश्च तस्य परामर्शः। लिंग परामर्श का अर्थ मैंने बताया था, लिंग का परामर्श। तो वही पूछ रहे हैं कि किम पुनः लिंगम, के लिंग क्या होता है, आ कश्च तस्य परामर्श। तस्य माने लिंगस्य, परामर्श माने लिंग का परामर्श क्या होता है। तो यहाँ पर दो प्रश्न हैं और दोनों प्रश्नों का ये उत्तर बताएंगे। उच्यते, उच्यते माने प्रश्नस्य उत्तरम उच्यते कथ्यते। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से अर्थात व्याप्ति ज्ञान के द्वारा अर्थगमकम, जो अर्थ का गमक हो। गमक के दो पर्यायवाची शब्द मैं बताता हूँ, एक तो ज्ञापक, दूसरा अनुमापक। ज्ञापक मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, और अनुमापक मतलब अनुमिति कराने वाला। तो गमकम, ज्ञापकम, अनुमापकम, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। और ऐसे मैं समझने के लिए आपको एक शब्द बता देता हूँ, बोधकम। गमकम माने बोधकम। मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि शास्त्र में ग्रह धातु का अगर प्रयोग होता है तो ग्रह धातु का अर्थ ज़्यादातर ना ज्ञान लिया जाता है। ऐसे ही शास्त्र में जब गम धातु का प्रयोग होता है तो वहाँ पर भी गम धातु का अर्थ ज्ञान ही लिया जाता है। ऐसे लोक में तो गम धातु का प्रयोग गच्छति, जाने के अर्थ में होता है, लेकिन शास्त्र में गम धातु और ग्रह धातु, इन दोनों धातुओं का अक्सर जो है ज्ञान अर्थ ही लिया जाता है। तो यहाँ पर गमकम का हम बोधकम समझ लें अर्थ, माने बोध कराने वाला। तो फिर से हम लौटते हैं कि व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक हो, जो अर्थ का ज्ञापक हो, जो अर्थ का अनुमापक हो, उसे ही हम लिंग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, व्याप्ति के बल से जो अर्थ का गमक हो अर्थात अर्थ का ज्ञापक हो, उस ज्ञापक को हम लिंग कहते हैं। लिंग शब्द की एक व्युत्पत्ति बड़ी अच्छी होती है, आप चाहें तो उस व्युत्पत्ति को आप लिख लें। लीनम बराबर अंतरहितम, लीनम बराबर अंतरहितम, लीनम बराबर अंतरहितम, अर्थम गमयति, लीनम बराबर अंतरहितम, अर्थम गमयति, गमयति, गमयति के बाद बराबर का चिन्ह दीजिए, फिर लिखिए ज्ञापयति। गमयति बराबर ज्ञापयति यत तत् लिंगम, गमयति बराबर ज्ञापयति यत तत् लिंगम। जैसे एक बार बोलता हूँ, लीनम बराबर अंतरहितम, अर्थम गमयति बराबर ज्ञापयति यत तत् लिंगम। मतलब ये हुआ जो लीन अर्थ को बता दे उसी को हम लिंग कहते हैं। तो लीन अर्थ क्या होता है, जो लीन अर्थ होता है ना वह प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। तो लीनम माने अप्रत्यक्षम, तो लीन इसीलिए लीन के बराबर अंतरहितम दिया। अंतरहितम माने अंदर में रहने वाला, तो अंदर में रहने वाली जो चीज होती है वह कभी प्रत्यक्ष नहीं होती है ना, वह अप्रत्यक्ष ही होती है। तो लीन अर्थ को जो बतावे उसे हम लिंग कहते हैं। लीन अर्थ मतलब अप्रत्यक्ष अर्थ अथवा अंतरहित अर्थ, ऐसा अर्थ जो प्रत्यक्ष, जिसका प्रत्यक्ष न होता हो और उस अर्थ को भी बता दे उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे पर्वत में जो आग रहती है वह दिखाई नहीं पड़ती है, वह लीन होती है आग। तो अप्रत्यक्ष अग्नि को भी जो है धूम जो है वह ज्ञान करा देता है कि यहाँ पर अग्नि है, इसलिए धूम ज्ञान को जो है ना लिंग कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, जो लीन अर्थ को बता दे उसे हम लिंग कहते हैं, माने अप्रत्यक्ष अर्थ को जो बता दे उसे लिंग कहते हैं। तो पर्वत में रहने वाली जो अग्नि है वह अप्रत्यक्ष है, वह दूर से नहीं दिखाई देती है, तो उस अर्थ को जो है ना बता देता है कौन, धूम ज्ञान, इसलिए धूम ज्ञान को लिंग कहा गया। अब फिर से चलते हैं ग्रंथ में, लिंग का लक्षण इन्होंने बताया था, व्याप्ति बले न अर्थगम कमलिंगम, जो व्याप्ति के बल से अर्थ को बतावे उसे हम लिंग कहते हैं। अब कहा कि यथा, उदाहरण देते हैं, यथा धूम अग्नेह लिंगम, जैसे धूम जो है वह अग्नि का लिंग होता है, क्योंकि लीन अर्थ जो अग्नि है उसका जो है ना वह गमक होता है धूम, इसलिए धूम लिंग हो गया। तथा ही अब जो है ना एक प्रश्न आपके मन में जरूर उठेगा कि यहाँ जो लिंग का लक्षण किया था ना कि व्याप्ति बले न अर्थ गम कम लिंगम, कि व्याप्ति के बल से जो अर्थ को बतावे वह लिंग होता, तो ये व्याप्ति क्या होती है, ठीक है। तो आप एक शब्द में समझिए कि व्याप्ति जो है ना संबंध को कहते हैं, संबंध अनंत होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें से एक संबंध जो है ना उस संबंध का नाम है व्याप्ति संबंध। तो व्याप्ति मतलब संबंध विशेष कह लीजिए, संबंध विशेष मतलब एक अलग टाइप का संबंध। तो वह व्याप्ति क्या होती है, व्याप्ति किसे कहते हैं, उसका लक्षण जो है ना यहाँ पर बताया जाता है। क्योंकि आप जब भी कहेंगे ना लिंग का लक्षण है व्याप्ति बले ना अर्थ गम कम लिंगम, तो मन में स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि ये व्याप्ति होती क्या है, तो उसी को बताते हैं। तथा ही यत्र धूमः तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। यत्र धूमः, जहाँ धुआं है तत्र अग्निः, वहाँ अग्नि है, इति साहचर्य नियमः, यह जो साहचर्य नियम है इस नियम का नाम यह है व्याप्ति। तो व्याप्ति मतलब मैंने पहले समझाने के लिए बताया था कि व्याप्ति संबंध विशेष है, अब जो है ना आप इस लक्षण को समझने के बाद कहिएगा व्याप्ति क्या होती है, तो नियम हो व्याप्ति, व्याप्ति मतलब नियम, कौन सा नियम, तो साहचर्य नियम, ठीक है। तो जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, इस तरह का जो साहचर्य नियम है उसे ही व्याप्ति कहा जाता है। आज का पाठ यहीं रखते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे।